نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کامیاب زندگی کے رہنما اصول، اس میں آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے زندگی کا کھیل. سین فرانسسکو کی گلیوں میں رہنے والا ایک سیاہ فام لڑکا یعنی بلیک بوائے جو سوکھے کے مرض میں مبتلا تھا. امیجینیشن میں لائیے، ایک بچہ ہے، لڑکا ہے اور گروتھ نہیں ہو رہی، سوکھا سمجھتے ہیں نا، سوکڑا بھی بولتے ہیں، جس کی ٹانگیں خشک ہو کر ٹیڑھی ہو گئی تھیں. زندگی سے کیا توقع رکھ سکتا تھا، یعنی اس کی اپنی زندگی سے کیا ہوپس ہیں کہ میں بڑا ہو کے کیا کروں گا. اسے کچھ امداد دی گئی اور بیساکھیاں فراہم کر دی گئی تھیں، بیساکھی سمجھتے ہیں نا. لیکن کیا یہ ہمدردی سے زندگی میں کسی بڑے مقام تک لے جا سکتی ہے؟ یعنی ایک شخص جس کی ٹانگیں کسی بیماری کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ گئی ہیں، کیا آپ صرف اس کو بیساکھی دے کر، اتنی سی ہمدردی کر کر زندگی میں کسی بڑے کام کے قابل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. آپ حیران مت ہوں، اس لڑکے کی زندگی کامیابی کی نفسیات میں ایک عجیب کیس کی حیثیت رکھتی تھی. امریکہ کے لوگ اسے جانتے ہیں. 11 سال یعنی 11 ایئرز کی ایج میں اس نے نیشنل فٹ بال لیگ کے عظیم دوڑنے والے کی حیثیت سے نام کمایا، یعنی یہ بچہ کامیاب ہوا. پھر یہ ٹی وی پر آنے لگا اور کھیلوں کی تاریخ میں آج بھی عظیم او جے کی حیثیت سے اس کو پہچانا جاتا ہے. پہلی بات تو آج یہ لکھ لیجئے کہ اگر آپ کو اللہ نے جسمانی طور پہ بھی کوئی کمی دی ہے نا، ہینڈی کیپڈ، کوئی جسمانی ایرر کمی ہے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، بونز کا کوئی پرابلم ہے، پاؤں نہیں ہے، تو پھر بھی آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، آپ اپنے خیالات کے آقا ہوتے ہیں یا پھر ان کے غلام، یہ آپ پر ہے. یعنی آپ کے جو خیالات ہیں، جو آپ کی تھنکنگز ہیں، آپ کی تھاٹس ہیں، یا تو یہ آپ کی اونر ہیں یا آپ اس کے اونر ہیں. یہ آپ پر ہے کہ آپ گوشہ گمنامی میں جا کر بیٹھ جائیں، بالکل اکیلے میں، تنہائی میں جائیں اور اکیلے بس یہ کہنا چاہیے کہ اپنے ہی خول میں گم ہو جائیں، یا بیرونی خلاؤں کو سر کرنے کے خواب دیکھیں، لوگوں کے لیے ایک مثال بن کر ابھریں اور تاریخ میں اپنا نام امر کر دیں. تو یہ دوسری بات لکھیے، آپ اپنے بارے میں جو سوچیں گے نا، آپ وہی کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی سے بیزار کسی کونے میں بیٹھ کر تنہائی میں گزار دیں تو آپ کی زندگی ایسی ہوگی، آپ لوگوں کو فیس نہیں کر سکیں گے. بعض جب ایسا ہوتا ہے لوگ فیس نہیں کرتے، ایسے چھوٹے چھوٹے زندگی میں نا حادثات بھی ہوتے ہیں. ہماری فیملی میں ایسا کچھ ہوا کسی بچی کے ساتھ، یعنی گھر نہیں بنا، پھر اللہ کا حکم پھر نہیں بنا. تو مجھے کسی موقع پہ خیال آیا تو میں نے کہا وہ نہیں تھی رات شادی میں، تو کسی نے کہا وہ اب کہیں نہیں جاتی، وہ شادیوں میں نہیں جاتی، وہ پبلک گیدرنگ سے گھبراتی. کیوں؟ لوگ باتیں پوچھتے ہیں، کہتی میں لوگوں کی لکس نہیں دیکھ سکتی یا لوگ مجھ پہ رحم کھاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو روگی کرے گی اور ڈپریشن میں چلی جائے گی تو وہ اس کا فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ ایک لمحے کے لیے کہے تو پھر کیا ہوا، اس کے بعد بھی تو بڑی خیر ہو سکتی. اور یہ جرات اللہ کا دین دیتا ہے، لیکن دنیا کی تعلیم آپ کو سیلف کانفیڈنس اس طرح کا نہیں دیتی. تو آپ کہتے ہیں نہیں، میں دنیا میں کیسی زندگی بسر کروں گی، مثال بنیں گی، میں نے چینج کرنا ہے لوگوں کو اور بعد میں لوگ مجھے یاد کریں گے. اب ہم دین کے رنگ پہ یاد کرنے کو صدقہ جاریہ کہہ لیتے ہیں. ہمیں یہ شوق نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں تو لوگ ہماری قبر پہ تختیاں لگائیں، ہمارے نام کے کوئی میڈلز چھپے. ہاں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جو حضرت ابراہیم کی تھی کہ وجلی لسان صدقن فی الاخرین، کہ اللہ میرے بعد والوں میں میرا ذکر خیر رکھنا. تو لہٰذا یہ اب آپ کے اوپر ہے. تو آپ اپنے اوپر یہ دوسری بات لیجئے، کیا آپ زندگی میں کیا سوچتی ہیں اور پھر آپ کیا بننا چاہتی ہیں. تیسری بات، ملک کی خاتون اول بننے کے بارے میں سوچنا ایک احمقانہ حرکت ہے. یعنی ہم میں سے کوئی سوچے کہ میں اس ملک کی ملکہ یا پریزیڈنٹ یا وزیر یا کوئی ایسی چیز بن جاؤں گی. گولڈا میئر نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا. یہ بھی حماقت ہی کی سوچ کہی جا سکتی ہے کہ آپ سوچیں آپ چاند پر اترنے والے پہلے آدمی ہوں گے، مگر نیل آرمسٹرانگ نے یہ بات سوچی تھی. مطلب کیا ہے اس بات کا کہ ہم بعض دفعہ وہ باتیں سوچیں بھی تو ہمیں عجیب لگتی ہیں، لیکن بعض دفعہ अल्लाह जिन लोगों को उन मुकामात पे ले जाता है, पहुंचा देता है, उन्होंने वो बात सोची होती है, करवाते हैं। अब चांद पे पांव रखने का ख्याल आया नील आर्मस्ट्रांग को, तो अल्लाह ने उसके लिए रास्ते खोल दिए। तो अगर वो कहता नहीं मैं तो डरता हूं, ये कहां होगा, मेरे से क्या होगा, तो कभी ना करता। ये हकीकत है कि हम वही कुछ बनते हैं जिसके बारे में हम शिद्दत से सोचते हैं। इसको हाईलाइट कर लें। मैं इस पे आपकी मदद करती हूं एक जुमला बोलकर। आज मैं जो हूं वो वही हूं जिसके बारे में मैंने शिद्दत से सोचा। देखिए, आप में से बहुत सारी बच्चियां अभी जिंदगी के इब्तदाई मराहल में सोचें, ड्रीमिंग करें, ख्वाब देखें। आप अगर 15 से 20 साल की एज के दौरान है ना, तो बेस्ट एज है ड्रीमिंग की। लेकिन ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आप जागते हैं। जिन ख्वाबों के लिए आप जागते हैं ना, वही ख्वाब हकीकत बनते हैं। ड्रीम्स कम ट्रू। किन के? जो सो जाते हैं ड्रीम देखकर? नहीं, जो ख्वाब देखकर उठ जाते हैं। ये ऐलान दुनिया के हर आदमी पर सच्चा साबित होता है। ये वादा बेचैन और मुतजस्सिस, यानी बहुत जिसमें क्यूरियोसिटी है, नौजवान के लिए भी है, काले के लिए भी है, गोरे के लिए भी है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, ईसाई के लिए भी। आप अपने जहन में खुद को जिस तरह बनते उभरते ज्यादातर देखते हैं, इसी तरह आप बन जाते हैं। बात समझे? देखिए, आप कभी अपने घर में छोटे छोटे खेलते हुए बच्चों से पूछे। मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा आप बड़े होकर क्या बनेंगे? और मुझे याद है कि ये जुमला हमसे भी लोग पूछते थे जब हम बच्चे थे। अच्छा, उस बच्चे ने बिल्कुल वही जवाब दिया जो कभी हम देते थे, डॉक्टर बनेंगे। कहने लगा मैं डॉक्टर बनूंगा और पुलिसमैन बनूंगा। अब मेरे दिमाग में आया कि दो मुख्तलिफ चीजें। मैंने कहा कि ये दो कैसे? पता क्या चला कि जो गेम देखता है ना, उसमें उसका हीरो पुलिसमैन है जो फाइट करता है, भागता दौड़ता है। और माँ ने हो सकता है ख्वाब दिखाया होगा कि बेटा तुम डॉक्टर बनोगे। लेकिन आप देखें कि जो सोच शुरू से होती है ना, बस दफा हमारे कदम उसी तरफ उठ जाते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने इंटरव्यू में बताया था कि वो बचपन ही से कोई बड़ा और अहम काम करने के बारे में सोचा करता था। वो ये काम हवाबाजी की दुनिया में करना चाहता था, यानी उसको शुरू से हला में और फिजा में घूमने का शौक था। है ना ये अजीब बात कि एक बच्चे की सोचें बिल आखिर खलाबाजी की रेग पर अपने कदमों के निशान छोड़ने में कामयाब हो गई। यानी एक बच्चा इस क्लासरूम में बैठ के सोच रहा है कि मैं चांद पे जाऊंगा। सोच इस क्लासरूम से उठी थी और एक दिन उसके कदम लग गए। याद रखिए, जो लोग दुनिया में कोई बड़ा काम करते हैं, दीन का या दुनिया का, बीसियों मिसालें मौजूद हैं, वो सफर सोच के सफर से शुरू हुआ। अगर आपने आज तक कुछ किया नहीं है ना, तो मान ले कि आपने सोचा ही नहीं है। आप इसको छोटी छोटी चीजों से भी देख सकती हैं। कुछ लोग होते हैं ना पाकिस्तान में, उनको बड़ा शौक होता है मैंने बाहर जाना है। एक फेवरेट शौक है हमारी यूथ का। अच्छा, वो आप क्या करें बेटा आजकल? बस वो मैं टॉफल का एग्जाम दे रहा हूँ। क्यों? फिर इसकी बेस पे मैं अमेरिका जा सकता हूँ, मुझे यूरोप का वीज़ा मिल जाएगा। यानी उनके उठते बैठते ख्वाब जो होते हैं ना, बाहर जाने के होते हैं। और आप अपनी फैमिली में देखेंगे कि फिर ऐसे लोग जो शुरू से कोशिश करते ना, किसी न किसी मुल्क का वीज़ा उनका लग ही जाता है, चाहे वहाँ जाके बर्तन धोएं, लेकिन पहुँच जाते हैं। और जो इतने नहीं गए आज तक, वो सोचते नहीं, वो कहते हैं जी जिधर अल्लाह ने पैदा किया उधर ही मारेंगे। अब ना बाहर जाना कोई कामयाबी और ना रुकना नाकामी है, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, आप जो चाहते हैं ना वही करते हैं। मैं अक्सर अपने आप को इस पे सोचती हूँ कि आज 2016 है, 16 अप्रैल है इस वक्त, मैंने 2017 के 16 अप्रैल तक कहाँ पहुँचना है? और 17 और 18 और 20, आप मुझसे कहें या मैं आपसे पूछूं कि अगले 5 साल में आप कहाँ होंगी, तो हमें से अक्सर का क्या जवाब होगा? जिधर अल्लाह का हुक्म। और जो कुछ कहेंगे जिधर हैं उधर ही होंगे। मैं तो अपने आप को नहीं सोचती, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अगले 5 से 10 साल का एक एक प्लान है। और मैं कहती हूँ कि वही होता है जो मैं सोचती हूँ। ये खौफ की बात है। ड्रीम्स जो आप देखते हैं ना, अल्लाह असबाब खुद ही बना देता है। आपका काम सिर्फ मंजिलों को ताड़ना है, रास्ते अल्लाह बना देता है। पीछे 5 साल पीछे जाके देख लें, 10 साल पीछे जाके देख लें, ऐसे लगता है तकदीर का कलम अल्लाह ने आपके हाथ में पकड़ा दिया है। क्यों? अल्लाह ना करे, कोई शिर्क नहीं है, ये नहीं है कि आप अपने मुकद्दर साज हो गए हैं। नहीं, ख्वाब देखते हैं, उसकी कुर्बानियां देते हैं। फिर ख्वाब देखकर कुर्बानियां, हिजरतें, वो ना दी हो, हिजरतें ना की हो, घर ना छोड़े हो, वो मेहनतें ना की हो, तो ख्वाब भी बेकार है। तो याद रखिए, जब हम सच्चे दिल से कोई ख्वाब देखते, पहली बात आप सीरियस होते, संजीदा होते हैं, फिर आप उस रास्ते की कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। हमारे तो पांव जमीन से लगे रहते हैं, अखला दे लर्दी, अल्लाह ताला कहते क्या हो गया तुमको, इज़ा क़ील लकुम उन्फिरु फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम इलल अर्ज़। जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, तुम्हारे पांव जमीन से ही लगे रहते हैं, तो फिर तो हम नहीं कहीं पहुंचेंगे। लेकिन आप यहां बैठकर अपना ख्वाब सोचें, आप देखिएगा अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करेगा। फिर अगली बात, आप अपने जहन की आंख से जो कुछ देखते हैं आप हासिल कर लेते हैं। ख्वाब कुछ हो, शराबी या नर्स, स्मगलर हो या पादरी, जीतने वाले हो या हारने वाले, हम ये जुमला लिख लें, हम वही बनते हैं जिसकी हमें सचमुच ख्वाहिश होती है। ख्वाहिशें बहुत होती हैं लोगों में, सच्ची मुच्ची नहीं होती, झूठी होती। यानी हम वही बनते हैं जिसकी सचमुच में हमें ख्वाहिश होती है, ठीक है? तो फिर जो नहीं बने वो ख्वाहिश सचमुच की नहीं थी। हर शख्स का अपना एक जाविया निगाह होता है, यानी एंगल ऑफ विजन, या विजन होता है या सोचने का एक अंदाज होता है। इसके अपने मुशाहदे, मुशाहदा कहते हैं ऑब्जर्वेशन को, इसके अपने मुशाहदे के मुताबिक जिंदगी के वाकयात के एक मखसूस मानी होते हैं। इसी तरह कामयाबी की नफ्सियात के भी कई मुख्तलिफ मानी मुख्तलिफ जहनों में हो सकते हैं। यानी आप ये कह लीजिए कि हर बंदे का कामयाब होने का क्राइटीरियन मुख्तलिफ होता है। वो अफराद जो कामयाबी के असूलों को समझते हैं और जो इन असूलों को अपने फ़ायदे, अपने अजीज़ों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो बहरहाल हमेशा खुश व हुर्रम नज़र आते हैं। लिखिए ज़रा ये बात, यानी कामयाब होने वाले लोगों को जिन मेयारात को अपने अंदर देखना है ना, या जो क्राइटेरियन है ना कामयाब होने वाले लोगों का, तो नंबर एक, ऐसे लोग हमेशा खुश हुर्रम दिखते हैं। जिस बंदे को देखकर आपको रहम आए ना, तरस आए, सॉरी टू से दैट, वो कोई इंप्रेसिव शख्स नहीं है। इस्लाम को बिल्कुल नहीं पसंद मरियल लोग, रोए हुए, तरसे हुए, आंखों में आंसू गिरे हुए और रो ही रहे, हालात के ही शिकवे रोते रहते हैं। अल्लाह डजंट लाइक दैट, मैं पूरी दलील से कह सकती हूँ। हदीस में आता है कि एक कवी मोमिन है, स्ट्रॉन्ग उमर जैसा, और एक नरम है, रकीक है, बुरा नहीं कहा, यानी एक वह जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, एक में नहीं है। फरमाए खैर दोनों में, लेकिन अल्लाह को कभी मोमिन पसंद है। लीडरशिप क्वालिटीज वाले लोग ही दुनिया में कुछ कर सकते हैं। और याद रखिए, फॉलोअर्स बहुत होते हैं। इस वक्त उम्मत को लीडर्स की जरूरत है। एक अच्छा मुखलिस लीडर आज मिल जाए उम्मत को, देखिए ये भेड़ों की तरह घुमी हुई कौम है ना, जो ये इमामत के दर्जे पे पहुंच जाएगी कि आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये वो कौम है कि इसको लीडर चाहिए, और अल्लाह लीडर देता है, मेरा ईमान है। लीडर तोहफे में मिलते हैं, ये एक्वायर्ड नहीं होते। आप हायर नहीं कर सकते लीडर्स को, आप बाहर से इंपोर्ट नहीं करा सकते कि हमारे स्कूल को एक लीडर चाहिए, लाओ इसको हम बाहर से बुलाएं। लीडर प्रोड्यूस होते, ये ऊपर से आसमान से फेंकता है अल्लाह। कब? जब आप अपनी कॉज और अपने मिशन में सच्चे होते हैं। आपका काम है अच्छे ख्वाब देखें, अच्छे असूल बनाए और खुश रहें। जो मिल जाए उस पर खुश हैं, रोते धोते क्या रहे, है ही कुछ नहीं, आता ही कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं, खुश रहे। नंबर एक। सेकंड क्वालिटी कामयाब होने वाले लोगों की, वो हमेशा तामीरी अंदाज में सोचते हैं। डिस्ट्रक्टिव थिंकर नहीं होते, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। आइडियाज होते हैं उनके अंदर, उनका माइंड कंस्ट्रक्शन का होता है। वो घर तोड़ने वाले नहीं होते, वो जोड़ने वाले होते हैं। वो कौमों को और अवाम को तोड़ते नहीं है, वो दिल तोड़ने वाली तकरीरें नहीं करते। वो कहते नहीं, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत खैर है इसमें, देखिए हमारा मुस्तकबिल अच्छा, तामीरी बातें करते हैं। तीसरी क्वालिटी कामयाब होने वाले लोगों की, वो हमेशा बुलंद सोचे रखते हैं, हाई थिंकर, हाई अचीवर। अलामा इकबाल ने भी कहा ना कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रखते सफर मीर कारवां के लिए। थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको ये बात और हजम हो। निगाह बुलंद, ये है निगाह बुलंदी, ऊपर देखते हैं। यानी जो लीडर होगा ना, वो हमेशा ऊपर देखता है, यानी उसके गोल बहुत बड़े होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में नहीं लोगों को उलझाता। सुखन दिल नवाज, बात करेगा तो दिल में उतर जाएगी, मीठे बोल, सुखन बात, जहां पुरसोस। तीसरी खूबी एक लीडर बनने के लिए जान जलाएं। फला अल्लाह का बाख्यु नफ्स का ला सारिहिम इल्लम यूमिनु बिहाजल हदीस या सफा, जो हमारे नबी जलाया करते थे जान, कि फरमाया नबी आप तो लगता है इनके गम में घुल के अपने आप को ही हलाक कर देंगे। सूरह कहफ में आप हर जुमे को पढ़ते हैं, सूरह शोरा में है, एक और जगह कुरान में है। तो जान जले, जो लीडर्स होते हैं ना वो जलते हैं, जिनको दुनिया के लिए कुछ करना है ना वो पहले कुड़ते हैं ये हो क्या रहा है गलत, और जिनसे पूछो क्या कहते सब ठीक है, और ये ऐसे ही रहना है, पानी छप्पड़ में से पाँव निकाल के चल जाओ, ऐसे ही रहनी है गली, ये हमारी गलियां ऐसी गंदी रहनी है, वो क्या बेचारे चेंज लाएंगे, वही होंगे जो रोज उस गली से गुजरते हुए रोएंगे ये कचरा क्यों लोग फेंकते हैं, ये चीज टेढ़ी क्यों पड़ी है इधर, ये लोग बदतमीजी से क्यों बोल रहे हैं, ये चलते फिरते क्यों, ये दरवाजा क्यों ऐसे खोलते हैं, यानी जो कूड़ेगा ना समझ लीजिए कि उसके अंदर वो खूबी आ रही है जो कल उसको लीडर बना देगी। फरमा यही है रखते सफर, ये तीन चीजें, ऊंची चीज देखना, बात में मीठा, और जान जलने वाली, यही है रखते सफर, यानी सफर का जो सामान किसके लिए, मीरे कारवां के लिए। मीरे कारवां तो आप समझते ही हैं, जिसको इस उम्मत का अमीर बनना है, कारवां ही है ना हमारी कौम, हमारी उम्मत, आप चाहते हैं इसके मीर बने, अमीर बने, हमको ये नहीं कहते टाइटल ले, लेकिन जिसका दिल करता है ना कि मैं मीरे कारवां बनूं, तो वो पहले ये तीन चीजें अपने अंदर लाए, तो ये चीज हमेशा उस बंदे को ऊपर लेकर जाएगी। चौथी बहुत ही खूबसूरत खूबी होती है कामयाब लीडर्स की, कि उनको हमेशा अच्छाई की तवक्को होती है, यानी वो लोगों से बेजार नहीं होते, हमेशा अच्छाई की तवक्को रहती है उनको, वो लोगों को हमेशा ये नहीं कहते तुमसे तो कोई खैर ही नहीं है, तुम बेकार लोग हो, अपने बच्चों को ये नहीं कहते तुम तो किसी काम के नहीं हो, अपने शौहर को ये नहीं कहते तुम तो हो ही नकम्मे, तुम में तो कोई खैर नहीं, बल्कि वो अपने लोगों में हमेशा अच्छी बात देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जितनी चीजें हम पढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज पैदा करेंगी। अगर जिंदगी को एक खेल से तशबीह दें, लेकिन इसे फुटबॉल की तरह नहीं समझना, जिंदगी में कोई वक्फा नहीं होता, खेल खेलते हैं ना आप, कहते इस वक्त वक्फा हुआ है, राइट, ब्रेक है, नहीं, जिंदगी चल ही रही है, मैं और आप कुछ काम करें ना करें, देखिए अगला पिछले 15 मिनट गुजर ही गए, मैंने आपने इससे फायदा लिया ना लिया वो चले गए। ये टाइम मैनेजमेंट सीरीज में भी हमने मिसाल दी थी, बल्कि उस पर एक पिक्चर भी बनाई थी बच्ची ने, कि लोग कहते हैं वक्त एक दौलत है, झूठ है, आप देखिए कि आप दौलत किसी जगह डब्बे में बंद करके रख दें 10 साल बाद भी वहीं होगी, लेकिन वक्त दौलत नहीं है, वक्त एक ऐसा टैंक है जिसके नीचे टूटी लगी हुई है, कतरा 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 उसका पानी निकल ही रहा है, दौलत नहीं निकलती अगर ना निकालें, तो वक्त की पूंजी खत्म हो जाती है, इस्तेमाल करें या ना करें। तो जिंदगी में ना वक्फा है, ना कोई तब्दीली की जा सकती है, यहां वक्त बस गुजरता ही जाता है, तो मेरी आपकी जिंदगी गुजर रही है, फिर इसी तरह इस खेल में ख्वाह कामयाबी हो या नाकामी, फैसला नहीं किया जाता, फैसले वहां होंगे, ये फैसला आखिरी लम्हे तक हो सकता है, कौन जीता कौन हारा। फमन ज़ुख़्ज़िहानी नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, सूरत आले इमरान में अल्लाह ताला कहते हैं जो जहन्नुम से बचा कर जन्नत में दाखिल किया गया वही कामयाब है। तो मुझे आपको अभी तक अपने आप को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैं कामयाब हूं कि नाकाम हूं, जब तक हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा ना आ जाए। हैरत होती है ये देखकर कि जिंदगी के इस खेल का पहला हाफ बड़ी सूरत से गुजर जाता है। पहला हाफ कौन सा होता है? जिंदगी के इब्तदाई 15 से 20 साल, ऐसे ही है ना। अगर आप देखिए कि उम्मत मुस्लिमा के नाते से देखें तो हमारी उम्रें 65 तक है ना, आधा कर लें तो 32 और आधा। जिंदगी का शुरू बड़ी जल्दी गुजर जाता है, चले 30 से 32 साल भाग जाते हैं। पहले आप बच्चे होते हैं, तरबियत है, स्कूल जा रहे हैं, फिर कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी है, कैरियर बन रहा है, फिर कैरियर के बाद शादी, शादी के बाद एक दो बच्चे, जब आंखें खुलती हैं तो आप 30 से ऊपर हो चुके होते हैं। 35 साल का एक आदमी इस बात पर खासी मतानत इख्तियार कर लेता है जब वो ये सोचता है कि इसने अपनी उम्र का आधा हिस्सा खत्म कर लिया है, मगर जब वो अपने नौ उम्र बेटे को फुटबॉल खेलते देखता है तो यकायक उसे याद आ जाता है कि ये तो अभी जैसे कल की बात है जब इसके बाप ने इसे खेलने पर डांटा था, वो अपनी बच्ची की किताबें देखते हुए हैरत करता है कि दुनिया किस कदर बदल गई। वो अपने टीचर से मिलता है तो कहता है, जनाब आप तो बहुत बूढ़े हो गए। और जवाब में से सुनना होता है कि तुम भी तो बूढ़े हो चले हो, बड़ी मुश्किल से तुमको पहचान सका। खुलासा क्या है? जिंदगी के शुरू के 30-35 साल बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं। जब अपने बच्चों को इंसान खेलता कूदता पढ़ता पढ़ाता देखता है तो उसको अपना वक्त याद आ जाता है कि तो कल की बात थी, मैं भी छोटा था। और कभी आप अपने उस्तादों से या पुराने लोगों से मिले तो आपको बहुत बूढ़े लगते हैं, लेकिन आपके अपने अंदर भी बुढ़ापे के असरात शुरू हो चुके होते हैं। तो इंसानों की बहुत सारी कसरत जो है ना, आधी से ज्यादा जिंदगी सिर्फ अपने सर्वाइवल के पीछे गुजार देती है। इस पर एक बहुत खूबसूरत टॉपिक चला था, मुझे उसका इस वक्त नाम याद नहीं है, जिंदगी की 3 स्टेजेस, सुनने के काबिल था वो, कि वाकई हमारी जिंदगी इस तरह से गुजरती है कि हमें होश ही नहीं, सर नहीं उठता हमारा, और आधी जिंदगी गुजर गई। अच्छा आप लिख के देखे, आप में से जो 35 से ऊपर जो उसके करीब है, मैंने क्या अचीव किया? अमूमन देखिए 30-35 साल तक शादी हो चुकी होती है, 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं, या ससुराल से बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, या आप उनसे बेजार होते हैं, और आपके शौहर जो हैं वो अपने कैरियर को डेवलप कर चुके होते हैं, पैसे आने शुरू हो चुके होते हैं, अपना घर बाज लोग ले चुके होते हैं। लेकिन क्या सोचने की बात नहीं है कि 30-35 साल तक भी एक कॉमन मैन को इंसानियत के लिए कुछ करने का ख्याल नहीं आता, उम्मत के लिए कुछ करने का ख्याल नहीं आता, दीन के रंग पे करें या दुनिया के। देखिए अब दुनिया को दुनिया के रंग में सर्व करें। आईफोन किसने बनाया? किसी मुसलमान ने बनाया? एप्पल कंपनी किसकी बिलोंग्ड है? टोयोटा कंपनी किसकी है? निसान किसकी है? नॉन मुस्लिम है आज, यानी वो दुनिया का तो कुछ दे रहे हैं ना लोगों को। पिछली एक सदी कह लीजिए, आधी सदी में उम्मत मुस्लिमा ने इंसानियत को क्या दिया? रॉकेट लॉन्चर चलते हैं, रिसर्च वर्क हो रहा है, नासा कंपनी देख लीजिए, जो इस वक्त बड़ी बड़ी इन्वेंशन आपने इस सदी में देखी किसने की है? गैर मुस्लिमों ने की है। तो मानिए कि वो कुछ दुनिया को तो दे ही रहे हैं ना। हम जब तक देने वाले थे हम ऊपर थे, और जब हमने देना छोड़कर सुस्ती इख्तियार की तो हम लोगों की गलत बातें भी मानने पे मजबूर हैं, क्योंकि सब कुछ आता ही उधर से है। तो लिहाजा याद रखिए कि जिंदगी गुजर रही है, मैं इससे फायदा लूं ना लूं। सच कहा था उमर खयाम ने, ये इसका एक कॉल लिखिएगा, कहता है कि वक्त एक परिंदा है, कोई नहीं जानता कि ये कितनी जल्दी गुजर जाता है। इससे क्या जाहिर होता है? यही कि वक्त की कीमत पहचानना जरूरी है, हमें इसके हर लम्हे की कदर करनी है। लिखें, कामयाब लोग अपने वक्त की कदर करते हैं, ख्वाब अपनी जिंदगी के पहले स्टेज पर हों या आखिरी पर। तय कर लीजिए कि आपको जिंदगी का ये खेल खेलना है, और सिर्फ जीतने के लिए खेलना है। गंवाने के लिए यहां कोई वक्त नहीं। चलिए हम यहां थोड़ा सा सोचते हैं। जिंदगी के खेल में 3 तरह के अफराद आपको मिलेंगे। अब मैं और आप जिंदगी का खेल खेल रहे हैं ना, आप देखिए कि अमूमन आपको 3 किस्म के लोग अपने इर्द गिर्द दिखेंगे, और आप इन 3 में से कोई एक हैं। आज आपने खुद को पहचानना है। पहली किस्म के वो लोग होते हैं जो सिर्फ तमाशाई होते हैं, नाजरीन होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, जो किसी भी स्टेडियम में बैठे खेल देख रहे होते हैं, तमाशा देखते हैं। इनकी अक्सरियत है, ये सिर्फ देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये अखाड़े में कभी नहीं जाते। क्यों? इनको मुस्तरद किए जाने के, जख्मी हो जाने के, मजाक उड़ाए जाने के खौफ लाहक होते हैं। ऐसे ही ना, यानी कुछ लोग खौफजदा बहुत होते हैं, कहते हैं ना ना मैं नहीं शुरू करता ये बात, मेरे से नहीं होनी, हाय मैं मर गया, हाय मैं खेल में गया तो मेरे पाँव में मोच ना आ जाए। बस ये देखते हैं। बहुत सारे ये तमाशाई कामयाबी से भी खौफजदा होते हैं। क्यों? इन्हें हार का इस कदर खौफ नहीं होता, ये जीत जाने के इम्कान से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि कामयाबी अपने साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी लाती है। कुछ लोगों को जीतने से भी डर लगता है कि हाय फिर इसके बाद जिम्मेदारी होंगी नहीं, हाँ कर दी तो फंस जाएंगे, हाय फिर अगर जिम्मेदारी ले ली तो फिर तो बहुत मुश्किल है, हाय नहीं मैं नहीं ले सकती। तो मान लीजिए आप ये पहले खेल में, आप वाकई दूर बैठे स्टेडियम में खेल को देखने वाले हैं। इन्हें एक उम्दा मिसाल कायम करनी होती है, और ये काम इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बस फिर वो सिर्फ देखने पर ही इक्तफा करते हैं, वो देखते रहते हैं कि दूसरे कर क्या रहे हैं, वो बस मैच देख रहे होते हैं, दूसरों की बातें सुन रहे होते हैं, बोलते नहीं है, देखते हैं कि देखते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन कुछ करते नहीं है, ये तमाशाई हैं। खैर जैसे भी हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी करे। दूसरी किस्म के खिलाड़ी, जिनको आप एक नाम दे दीजिए, शिकस्त खुर्दा। पहले ही उनको पता है कि हमने हार जाना है। आदमियों की इस कसरत को शिकस्त खुर्दा कहा जाता है। इन लोगों से हमारा मतलब ऐसे लोग हैं जो कभी कामयाब होते ही नहीं, दरअसल वो कामयाब होना ही नहीं चाहते। इन्हें पहचानना मुश्किल नहीं होता। आप इन्हें इनकी हासिदाना और नुक्ताचीनी आमेज गुफ्तगू से पहचान लेते हैं। यानी ये हमेशा दूसरों पर नुक्ताचीनी करते हैं या हसद करते हैं कामयाब होने वालों से। ये लोग खुद ही अपने आप को नीचे गिराते दिखाई देते हैं। यानी हमारे वालिद एक मिसाल दिया करते थे कि जो खिलाड़ी घर से ही हारने की नीयत लेकर जाए, उसको कौन जिताएगा। तो ये भी जिंदगी में एक किस्म होती है लोगों की, वो पहले से सोच रहे हैं हमने हारना है, हमें काम नहीं करना आता, हम ठीक नहीं कर सकते। तो आप बताइए फिर, ऐसे लोग तो घर से खुद ही गए थे हारने का ख्वाब देखकर, तो इनको कौन जिताए। हाँ, एक तीसरी किस्म के लोग हैं, अल्लाह मुझे आपको उनमें कर दे। ये लोग जीतने वाले कामयाब लोग होते हैं, ये बहुत कम होते हैं। लिख लीजिए, कलीलम मिन इबादिय शकूर, कलीलम माहुम, कुरान में ये लफ्ज भी आता है। थोड़े, बहुत थोड़े लोग होते हैं। इन्हें हमेशा अपने मकासद में आसानी से कामयाबी हासिल करते देखा जाता है। अच्छा, ये भी नोट कीजिएगा, जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो कहते हैं बड़े आराम से हो गए, और जो लोग कामयाब नहीं होते, आप उनसे पूछे, कहते हैं ना बहुत मुश्किल है कामयाब होना। बस आप दो लोगों को काम दे दें, मिसाल मैं आपको देती हूँ, हमारे पास चूंकि कोर्सेज चलते हैं ना, तो कोर्स इंचार्ज किसी एक को बना दें। आप ऑनलाइन कोर्स है, ऑन साइट है, वेयर एवर, जहां भी है। दो तरह के मैंने देखा है कोऑर्डिनेटर, एक है उनसे सुनाए, कहते हैं सब ठीक जा रहा है, सब ठीक है माशाल्लाह, ग्रुप लीडर्स भी ठीक हैं, स्ट्रेस आ रहे। वो उनके साथ कभी फोन पे बात हो, मीटिंग हो, उनकी रिपोर्ट देखा, ऐसा लगता है एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। और एक दूसरी किस्म भी है, अल्लाह रहम करे, बात कर ले, मीटिंग में बुला ले, शिकवे ही शुरू, ग्रुप लीडर नहीं अच्छे, स्टूडेंट बेकार हैं, टाइम पे नहीं आते, कंप्यूटर नहीं चलते। जब आप गौर से देखते हैं ना, तो ये उनकी अपनी पर्सनैलिटी का नक्श होता है। जो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं, वो आसानी से कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल फितरी अंदाज में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, हासिल कर लेते हैं। घर पर, दफ्तर में, शहर में, सड़क पर, ये अपने आप को जाहिर करते मिलते हैं, क्योंकि इनमें स्किल्स होती है ना चीज़ों को लेने की। और जहाँ इंचार्ज अच्छा मिल जाए ना, सोचें आपको अल्लाह ने सुकून दे दिया, और गलत इंचार्ज आप किसी एक प्रोजेक्ट पे लगा दें, दर्द सर से कम नहीं है, उसको वो भी मसले दिखने हैं जो है ही कोई नहीं है। खैर, ये ऐसे मकासद तय करते हैं और ऐसे काम कर डालते हैं जिनसे इन्हें भी फायदा होता है और दूसरों को भी। यानी इजी गोइंग होते हैं, टेक इट इजी, हालात को देखो, रिसोर्सेज को देखो, डिमांड को देखो, वट एवर इज पॉसिबल डू इट। हर वक्त मसला ही तो ना खड़ा रखे। तो लिहाजा ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। जीत या फतह का लफ्ज शायद आपको अजीब लगे, ये कुछ मादियत आमेज लगता है, इसमें किस्मत, इत्तफाक या ताकत के अनासर नजर आते हैं। सच्ची जीत सिवाय आदमी की सही के, जो वो खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, और कुछ नहीं। लिखें जरा, जीत की तारीफ लिखें, विनर। आप कैसे किसी चीज को जीतते हैं? वो कोशिश जो खुद को बेहतर बनाने के लिए आप करते हैं। देखिए, 100 बातों की एक बात है इस जुमले में। अगर आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप जीत गए। रिजल्ट्स का नाम जीत नहीं है। आप कह लें कि हमारा दीन एफर्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं है। जिंदगी में जीतने के लिए किस्मत वाला होना शर्त नहीं। हमारे यहां तो ये कहते हैं ना, फलां बड़ा खुशकिस्मत, फलां बड़ा बदकिस्मत। नहीं, किस्मत भी उनकी बनती है जिनके अंदर किरदार होता है। ना ही अपने मकासद के लिए दूसरों को मारने की जरूरत है। यानी आप कहते हैं मैं अपना मकसद तभी हासिल करूंगी जब दूसरे को मार दूं, तो फिर क्या है? जरा बड़े खूबसूरत जुमले लिखाती हूँ आपको, लफ्ज कामयाबी की डेफिनेशंस लिखिएगा, आपको एक डिफरेंट अप्रोच मिलेगी इंशाल्लाह ताला। नंबर एक, कामयाबी दरअसल नाम है, अपने पैदाइशी जौहरों को अच्छी तरह संवारने और इस्तेमाल करने का, ताकि आपको खुशियां मिल सकें। अब आसान लफ्जों में बताती हूँ। हर बच्चा फितरत का एक अनमोल तोहफा है। हर इंसान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा सुन सकता है, कोई हार्ड वर्कर है, किसी का माइंड अच्छा है। होता क्या है कि वर्क के साथ हमारी ये स्किल्स जो है ना, ये दब जाती हैं, जैसा माहौल होता है उसमें दब जाती हैं। आपको कोई उस्ताद मिल जाता है, कोई मुरब्बी, कोई मुज़क्की, लोग उसको पीर मुर्शिद कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन आपको एक ऐसा ट्रेनर मिल जाता है, मैं उसको इंग्लिश में ट्रेनर कह देती हूँ, जो आपकी वो छुपी दबी चीज को अंदर से निकाल के मट्टी झाड़ता है आपके ऊपर से, गंदी चीजों की, अखलाकी गंदगियां निकाल के अंदर से आपका वो खूबसूरत जौहर, जौहर समझते हैं ना, जो एक्सट्रैक्ट है, वो ला के आपके हाथ में देता है कि चल बच्चा जा देख तुम कितनी तुम में खूबी है, करो तो सही। जू ही आप वो उस जौहर को लेकर जिंदगी के किसी फील्ड में जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं। आप सुने फिर दोबारा इसी बात को, कामयाबी क्या है? दरअसल अपने पैदाइशी जौहरों को अच्छी तरह संवारने और इस्तेमाल करने का नाम। यानी आप कह लीजिए बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने इतना कुछ दिया और उनके साथ ही कब्र में चला जाएगा, और ये सब करना क्यों है? ताकि हमें खुशियां हासिल हो। एक जुमला लिख ले मेरी तरफ से, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में खुश रहने के लिए भेजा है। ये एक मुसलमान का, काफिर का, फाजिर का, यानी हर इंसान, इब्ने आदम का हक है कि वो खुश रहे। और सच्ची खुशी इस्लाम से मिलती है, सच्ची खुशी तौहीद से मिलती है, सच्ची खुशियों का रास्ता कुरान से मिलता है। इसलिए एक सच्चा मोमिन दुनिया का खुश तरीन शख्स होता है। किसी दीनदार को अगर आप खुश ना देखें ना, तो आप उसके बारे में बदगुमान हो सकते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ है, कहीं ना कोई अफरात और तफरीत है। चलिए एक और तारीफ लिखिए कामयाबी की। कामयाबी का एक ख्वाब है जो आप अपने बारे में देखते हैं, एक ऐसे इंसान के रूप में जो सर उठाकर चलने की पोजीशन रखता है। क्या समझे? कामयाबी एक ऐसा ख्वाब है कि आप सर उठा के चलने की पोजीशन में आ जाते हैं। जिसने ये ख्वाब नहीं देखा ना, वो कभी कामयाब हो भी गया तो उसको पता भी नहीं चलेगा मैं कामयाब हो गया हूं। तीसरी तारीफ लिखें, कामयाबी लेने और देने का नाम है, गिवर एंड टेकर। आप बनेंगे तो कामयाब है। मोहब्बत के माहौल में, उन्स और हमदर्दी की फिजा में, जिम्मेदारी की छत तले। मोहब्बत के माहौल में, उन्स और हमदर्दी की फिजा में, जिम्मेदारी की छत तले। या किसी को कुछ दें तब आप कामयाब हैं, या किसी से लें, लेकिन शर्त यह कि आप जहां हैं वहां मोहब्बत का माहौल हो, एटमॉस्फेयर खूबसूरत हो, आप अपने साथियों से उन्स महसूस करें, और आपको अपने साथियों पे हमदर्दी हो, उन पे ऐसा रोब ना डाल दें कि वो बेचारे कर भी नहीं सकते और आपके रोब से वो बोल भी नहीं सकते, और ये सब कुछ जिम्मेदारी की छत तले। अगली तारीफ लिखें, कामयाबी नाम है थके हुए हांपते हुए चौथी पोजीशन पर आने का। आप कहेंगे हैं, चौथी पोजीशन पे आने का नाम कामयाबी है? नहीं, आपने पूरी बात नहीं अभी सुनी, फिर बोलती हूँ। कामयाबी नाम है थके हुए हांपते हुए चौथी पोजीशन पर आने का, जबकि पिछली बार आप लोग बोलेंगे, इस जुमले को पूरा करेंगे, जबकि पिछली बार आप पांचवी पोजीशन पर आए। शाबाश, आपने ठीक सोचा, यानी पिछली दफा पांचवी पे थे, हांप के कांप के थक के इस दफा चौथी पे आ जाए तो आप कामयाब है। आपसे ये नहीं कहा जाता आप पांचवी से पहली पे आ जाए, बस आपने थोड़ी सी कोशिश करके एक दर्जा अपने आपको ऊपर लाया, आप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। ठीक है, अगली तारीफ लिखिएगा, कामयाबी नाम है अपनी जात को दूसरों के लिए शाहाना तौर पर खर्च करने का। अपनी जात को दूसरों के लिए शाही तौर पर खर्च करना। किसी को कोई आयत याद आई है? शाबाश, बिल्कुल सही समझी। वम ममा यन फो नासु फयम कुस, बस जो दूसरों को नफा देगा वही बचेगा। आज इमाम बुखारी का नाम क्यों मौजूद है? उन्होंने दूसरों को नफा दिया। ये चारों आयमें कराम से जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, क्यों करते हैं? उन्होंने अपने अपने वक्त में लोगों को नफा दिया था। आज अबू हुरैरा से लोग मोहब्बत क्यों करते हैं? उन्होंने लोगों को नफा दिया। और आज आप दुनियावी चीजों में देखिए, जिसने बिजली पैदा की, जिसने वैक्सीन बनाई, फायदा दिया ना, तो कामयाबी है दूसरों को नफा देने का नाम। अगली बात, कामयाबी नाम है दूसरों को खुशामदीद कहने का। ये तो आज हमारे कल्चर का कोई हिस्सा ही नहीं दिखती। हम कहते हैं दूसरों को वेलकम के और हम कामयाब हुए, तौबा करें हम तो नीचे लग गए। नहीं, खुश आमदेद मरहबा, ये आपकी कामयाबी की दलील है। फिर नेक्स्ट, कामयाबी नाम है जानवरों को जी रूह समझने का, यदि जानवरों में भी रूह है उन पे बोझ ना डालें, और इंसानों को अपनी तरह जानने का, यानी दूसरे इंसानों को आप अपनी तरह का इंसान समझिए। कोई इंसान गुलाम नहीं पैदा हुआ। हालात के तहत कुछ लोग आपके मेरे अंडर आ सकते हैं, हमारी मासियां, हमारी मेट्स या हमारे साथी। अल्लाह ने कोई काम आपको ज्यादा दे दिया करना, दूसरे को कम, लेकिन वो आपकी जैसा इंसान है, आपने उसको हर्ट नहीं करना। फिर नेक्स्ट, कामयाबी नाम है ये सोचकर खुश होने का कि आप जैसे हैं खूब हैं। समझ आई आपको? अपने ऊपर खुश हो, मैं जैसी हूं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूं, यानी आप कह लें कि इसमें आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। फिर नेक्स्ट, कामयाबी एक आदत का नाम है। कामयाबी कभी कभी नहीं होती, याद रखिए। वंस अ वाइल तुक्का लग गया, अचानक का फर्स्ट आ गए, अचानक आपका ए ग्रेड आ गया। जो मैट्रिक में फर्स्ट आता है ना, आप देखेंगे वो नाइन्थ में भी फर्स्ट ही आया था, एट्थ में, सेवन्थ में। एक आदत है। कामयाबी अचानक नहीं होती, वो तो गलत तुक्का होता है, बल्कि वो तो ऐसे ही लगता है शायद किसी की रिश्वत ना काम आ गई हो। तो कामयाबी एक आदत है। फिर नेक्स्ट, कामयाबी एक गैर मशरूत मोहब्बत है, यानी शर्तों के बगैर मोहब्बत कामयाबी का नाम है। फिर नेक्स्ट, कामयाबी सोच का एक मसलक है, जिंदगी का एक ढंग है। मसलक समझ गए ना, सलका से कहते हैं चलना, मसलक वो रास्ता जिस पे चला जाए। इसी से ये दीन में लफ्ज मसलक भी लोग यूज करते हैं ना, आपका मसलक क्या है। तो मसलक इज अ कॉमन वर्ड कि चलने का रास्ता, आप इसको आसानी से कह सकते हैं। कामयाबी सोच का एक ऐसा रास्ता जिस पे चला जाए और जिंदगी का ढंग है, और कामयाबी सरासर एक रवैया है, रवैया एटीट्यूड का नाम कामयाबी है। हुनर या जौहर तो सस्ती शय है, आप इसे खरीद भी सकते हैं, भर्ती भी कर सकते हैं, ये बहुत मिलता है। यानी डॉक्टर आप खुद नहीं बने तो आप किसी डॉक्टर को फीस देकर इलाज करा सकते हैं। दुनिया में हजारों हुनरमंद शराबी मौजूद हैं। तालीम सस्ती तो नहीं है मगर खरीदी जा सकती है, इसे उधार भी लिया जा सकता है। अगर आपके पास रकम हो आप बहुत से डिप्लोमे ले सकते हैं, मगर हमें हजारों तालीम याफ्ता बदमाश भी नजर आते हैं, ये किसी अच्छे काम के लायक नहीं होते। मतलब पता क्या है कि दुनियावी तालीम हासिल करके भी लोग नाकाम रहते हैं, ये मुराद है। पैसों से आप डिग्रियां ले सकते हैं, पैसा लगाते जाएं, रिसोर्सेज यूज करते जाएं, कामयाब होते जाएं, लेकिन रुझान, रुझान समझ गए, इंक्लाइनेशन, रुझान जी नहीं, रुझान नहीं बल्कि रवैया कामयाबी का मियार है। रवैया आपको लाखों रुपए से भी नहीं मिल सकता, रवैया बाजार में नहीं बिकता। अफराद एक जैसे पैदा नहीं होते, कुछ गरीब होते हैं, कुछ दौलतमंद। दरअसल कुदरत के हां बराबरी का कोई तसव्वुर नहीं है। जितनी बात अभी की है इसका खुलासा कर देती हूं कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। एक रवैया है, एक सोच है, एक आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया और आपने उस पर लब्बैक कह दिया। जो लोग अल्लाह ताला के दिए हुए मौके का फायदा उठाते हैं ना, अल्लाह ताला उनको कामयाब कहता है। और जब आप कामयाब होने की नियत कर लेते हैं ना, तो असबाब अल्लाह ताला खुद बनाता है। जो बात की है इसमें से कुछ बोलिए, कोई सवाल, कोई आपका इनपुट, कोई एक्सपीरियंस, तो इधर आज रुकेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। जी आप इधर से। गैर मशरूत मोहब्बत का नाम है, किसी से मोहब्बत की कोई शर्त ना लगाएं, समझिएगा। आप कहते हैं इससे मुझे मोहब्बत है क्योंकि ये मेरे भाई का बच्चा है, इससे मुझे इसलिए मोहब्बत है कि ये मेरा अपना बच्चा है। हम दुनिया में जिससे भी मोहब्बत करते हैं ना, किसी शर्त पे करते हैं, कंडीशनल लव होता है। चूंकि आप सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, चूंकि आप सब इस मस्जिद या मसलक या गिरोह से जुड़े हुए तो मोहब्बत है। बाज लोग कहते हैं ये हमारी दीनी बहन है, ये हमारी इस्लामी बहन है, ये शर्तिया मोहब्बत है। इसका मतलब ये है कि बेलॉस मोहब्बत करें दूसरों से। काला है, गोरा है, बिलाल है, हबशी है, कोई अफ्रीकी है, कोई सोमाली, आप ये ना कि ये पाकिस्तानी है तो इससे मोहब्बत है, ये मतलब है इसका। یعنی غیر مشروط محبت، بس محبت بانٹے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں محبت فاتح عالم. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئیے بات. اور جب تک لوگوں کو نفع دیتے رہیں گے اللہ آپ کو کامیاب کرتا رہے گا. آج ہم بے عمل ہو گئے. مجھے تو لگتا ہے مسلمان اس وقت ایک بے حسی کا شکار ہے، نہ ہم دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، یا کھانے کے ہیں یا پینے کے ہیں یا پہننے کے ہیں یا دعوتیں اور شادیاں کے. آپ دیکھیے جا کے اپنے لوگوں کو ایسے لگتا ہے سارے موجیں کر رہے ہیں، موج کا نام ہے، مستی کا نام. کبھی آپ کو دوسروں میں وہ مستی نہیں زندگی کی دکھے گی جو آپ کو آج کے مسلمان میں دکھتی ہے نا. تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے، اور اگر میں بدل گئی تو سب بدل سکتے ہیں. ہم دوسروں سے تبدیلی کا سفر نہیں شروع کر سکتے، ہمیں اپنی فکر کرنی. ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے نا، تو ہم نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق لینا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اسلام کا غلبہ جب بھی آیا ہے وہ دین کی تعلیم کے تھرو ہی آیا ہے، یہ چاہے برصغیر پاک و ہند تھا یا مکہ اور مدینہ تھا. آج بھی یہی ہوگا، آپ اس دین کو بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی خوف کے عام کرتے جائیں. یہی تربیہ، یہی تزکیہ کا رستہ ہے، اور اسی سے تبدیلی آئے گی. تین دفعہ قرآن میں نبی کے وصف اللہ نے بیان کیے کہ یزکیہم و یعلمہم الکتاب، یعنی اللہ کے نبی نے لوگوں کو کتاب پڑھائی، تزکیہ کیا، ان کو حدیث سکھائی، ان کو زندگی کا مقصد سکھایا. آج اصل میں ہماری زندگی کا مقصد ہمارے ہاتھوں سے گیا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.